शांति। एक राज्य में एक बड़ा मशहूर चोर था। वो इतना मशहूर था पर किसी ने उसको कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसकी चोरी में मशहूर होती थी, पर वो व्यक्ति कौन था किसी को पता नहीं था। तो चोर एक बार अपनी चोरी खत्म करके घर जा रहा था तो एक जगह देखता है कि बहुत लोग इकट्ठे हो गए और कोई सामने गुरु बैठा है, कुछ बातें चल रही है। तो वहां जाता है तो पीछे ठहर के सुनते रहता है, तो सत्संग चलती रहती है। तो सत्संग के दौरान वो कुछ बातें सुन लेता है और वहां पे वो गुरु की एक बात सुनता है जहां गुरु बोलता है कि अगर आप परमात्मा को हमेशा याद करोगे तो आप सब कुछ पालोगे। तब वो सोचता है तो मैं चोरी क्यों करूं, परमात्मा को याद करूंगा तो सब कुछ मिल जाएगा, तो चोरी करने की जरूरत नहीं है, सोच लेता है। फिर वो और एक बात गुरु भी सोचता है, ठीक परमात्मा को तो याद करना है, भले कोई स्थिति भी आए हमको हमारी प्यूरिटी को रखना है, हमको पवित्र बनना है और हमको कभी झूठ नहीं बोलना है। तो ठीक है, ये दो ही चीजें करना है, कभी झूठ नहीं बोलना है और परमात्मा को याद करना है, तो फिर मैं चोरी क्यों करूं, मैं चोरी नहीं करूंगा। बहुत प्रभावित हो जाता है। उसी रात को घर जाके अपनी पत्नी से बोलता है कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। पत्नी बोलती है पागल हो गए हो क्या, अगर चोरी नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या, बच्चों को क्या देखेंगे। नहीं नहीं, आज मैं वापिस आ रहा था, मैंने एक सत्संग पे गया था तो वहां पे मैंने सुना था कि अगर हम परमात्मा को याद करेंगे हमको सब कुछ मिल जाएगा। पत्नी बोले ऐसा कुछ होता है। नहीं नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। तो बोलती पागल हो गए, तुम झूठ नहीं बोलोगे तो फिर चोरी में पकड़े जाओगे, जो भी हो परमात्मा को याद करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। बस वही रट लगा के बैठता है, प्रभावित हो गया रहता उस दिन। फिर उसको पत्नी बेटी बोलती है देखो अगले अभी एक हफ्ते के लिए कुछ भी घर में अनाज नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ करना होगा। तो तब वो चोर बोलता है ठीक है, आज मैं आखिरी बार आज रात को मैं चोरी करूंगा पर झूठ नहीं बोलूंगा। तो एक हफ्ते के लिए चल जाएगा, फिर हम कहीं और कहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं पर परमात्मा को याद करते रहे। तो उस दिन वो चोर अपने चोरी पे निकल पड़ा, पर उसने ठान लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो रास्ते में जब जा रहा था तो राजमहल से कुछ व्यक्ति लोग भी थे और उसमें राजा भी था, पर इसने तो कभी राजा को नहीं देखा था। तो लोग आते हैं तो ये अपने रास्ते पे चल पड़ा होता है तो उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? उसने तो ठान लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो बोलता है कि मैं वो मशहूर रामू चोर हूं। तो लोग हैरान हो जाते हैं, ये कोई शायद पागल होगा, कोई अपने आप को कुछ चोर क्यों बताएगा। मजाक में ले लिया उन्होंने। फिर वो बोलते, ठीक है कहां जा रहे हो? तो बोलता है, मैं आज राजमहल जा रहा हूं चोरी करने। तो वो समझ जाते नहीं ये वाकई पागल है। तो उस रात चोर ने चोरी की। अगले दिन मंत्री राजा के पास पहुंचता है, कहता है, महाराज ट्रेजरी से 10 हीरों की चोरी हो गई है। तब राजा को याद आता है, अरे यार वो कहीं वो तो चोर नहीं है जो उसने चुराया है, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। सारे लोग जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं। तो चोर को दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। तो महाराज बोलता है, तो तुमको हम जेल भेज देंगे, तुमने चोरी किया है, 10 रत्नों को आपने चुराया है, आपको हम जेल भेज देंगे और तुमको 10 रत्न वापस चुराने हैं, वापिस देने हैं। तो चोर बोलता है, महाराज माफी चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपके 2 रत्न में वापिस कर सकता हूं। क्या बोल रहे हो? बोलता, नहीं मैंने तो 2 रत्न ही चुराए, तो मैं 2 ही रत्न वापिस करूंगा। कैसे कह सकते हो कि तुम 2 रत्न चुराए हो? नहीं मैंने ठान लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तो महाराज बोलते हैं, तो तब उनको महाराज को याद आता है, हाँ परसों भी ये कभी जब मैं झूठ नहीं बोल रहा था, अपने आप को चोर बोल रहा था और बोल रहा था कि महल जाके मैं चोरी करूंगा, तो बाकी के 8 रत्न किधर है? तो चोर बोलता है, वो मंत्री ने चुराए। महाराज पूछते, इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? तो बोलता है कि ट्रेजरी में जाने का रास्ता सिर्फ मुझे अकेले को पता है और ट्रेजरी का चाबी सिर्फ मंत्री के पास है। तो महाराज मंत्री की तरफ देखते तो मंत्री अपना सिर नीचे कर देता है। तो मंत्री जेल चले जाता है और चोर मंत्री बन जाता है। तो आज का टॉपिक है कि हम फुल स्टॉप कैसे लगाएं। तो ये चोर का वही कहानी है, तो जिसने अपने ठान लिया था कि फुल स्टॉप कैसे लगाएं, तो उसको जब रास्ते में उसको पता था कि अगर मैं झूठ सच बोलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, पर वो जब उसको परिस्थिति सामने आई तो उसने अपने गुरु के शब्द याद रखे, तो उसने अपने स्मृति में लाया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने 2 चीजें लाए थे, तो एक उसने विल पावर बन लिया था और अपने गुरु को स्मृति में लाया था। तो जो 2 चीजें उसने किए थे, तो आज का टॉपिक वही है कि हम फुल स्टॉप कैसे लगाएं। तो ये जो प्रश्न है कैसे फुल स्टॉप लगाएं, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। फुल स्टॉप कब लगाना है, क्यों लगाना है, वो थोड़ा बहुत आसान है। कैसे लगाएं उसके बारे में हमको बात करना है, इसलिए क्योंकि हमारे जिंदगी में फुल स्टॉप होता ही नहीं, तो फुल स्टॉप कैसे लगाएं। एक के बाद एक कॉमा आते रहता है, कॉमा 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 कॉमा, या तो जिंदगी का फुल स्टॉप तो आखिर का होता है, तो बीच में ही फुल स्टॉप कैसे लगाए, कॉमा कॉमा कॉमा। पर अगर हम देखते हैं तो कॉमा एक के बाद कॉमा आता है, फिर एक आता है कॉमा, पर वो कॉमा के बीच में क्या है? वो है कामा, काम, ठीक है, के में, ठीक है, एक काम के बाद कॉमा, फिर काम, कॉमा कॉमा कॉम, ऐसे चलते रहता है। आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा ब्यूटीफुल एक संस्कृत कविता लिखी है, ठीक, तो उसमें लिखा है उसने अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम मतलब जब शरीर मुरझा जाता है, पलितम मुंडम जब सिर पे बाल नहीं रह जाते हैं, दशविहीनम जातम तुंडम शरीर और मुरझा जाता है, और जातम तुंडम मतलब मुंह से दांत निकल जाते हैं, वृद्धो याति गृहित्व दंडम और बुढ़ा होते जाता है दंडा पकड़ने भी लगता है, तड़पिनम उंचत आशा पिंडम तो वो तड़पने भी लगता है पर आखिर में आशा पिंडम वो अपनी आशाएं कभी नहीं छोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हमको क्या आशाएं नहीं रखना है, हमारी तरक्की के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए क्या हमको आशाएं नहीं रखना है? रखना है, पर हम उससे कितना संतुष्ट रहते हैं ये हमको फैसला करना है। तो एक हैप्पीनेस क्वेश्चन करके माना जाता है, हैप्पीनेस क्वेश्चन मतलब कि आपके एक इच्छाएं हैं और वो कितने फुलफिल हो जाते हैं। तो आपके पास 10 आशाएं हैं तो 2 फुलफिल हो गए तो आपका हैप्पीनेस क्वेश्चन हो गया 2 out of 10 20%, 5 फुलफिल हो गए 50%। पर हमारे जिंदगी में जब हमारे कॉमाज आने लगते हैं तो जब तक हम 9th इच्छा को हम पूरी करने जाते हैं तब तक हमारी इच्छाएं 100 बन जाते हैं, तो अगेन वी आर बैक टू 10%। तो हम अपने आप से कितने संतुष्ट है उस पर निर्भर करता है। इसका ये मतलब नहीं कि आशाएं रखना गलत है, अगर हम आशाएं रखेंगे तो तभी तो हम खुश कर पाएंगे। आज हमको आशाएं ज्ञान की होनी चाहिए तो तभी तो हम हमारी प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसी की वजह से आज हम सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप में इस तरह से मिलते हैं। तो बाबा ने एक अच्छा मुरली में एक वरदान दिया था कि भले कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप हम तब लगा सकते हैं जब हम बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों को ही हम स्मृति में हो। फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को जो ऑफर करते हैं वो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। बिंदु रूप में स्थित हो जाएं तो योग युक्त संयुक्त और युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव हम करेंगे। तो कौन सी भी परिस्थिति आए तो हमको उस वक्त हमको अपने आप को स्मृति में लाना है। तो चोर ने क्या किया था, जब उसको राजमहल के लोग मिले थे तो उसने अपने उस सत्संग को स्मृति में लाया कि मुझे झूठ नहीं बोलना। तो जब भी हमारे कोई जब भी परिस्थिति है तो हमको उसको हमके स्मृति में लाना। शिव बाबा कहते हैं अगला पॉइंट में कि हमको हमारी विल पावर बनानी है। विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये दो चीजों के बारे में शिव बाबा बात करते हैं। विल पावर मतलब क्या, विल पावर मतलब जो हम संकल्प बनाते हैं भले वो कर्म द्वारा हो या वाणी द्वारा हो, पर वो संकल्प को हम बाप को अर्पित करते हैं। पर केवल हम अर्पित करते हैं, संकल्प बनाने से विल पावर बनाने से काम नहीं चलेगा। हम बैठे हैं बाप की स्मृति में, विल पावर बनाए कि हमने ठान लिया कि मुझे ऐसे करना है, पर जब हम उसकी स्मृति में बैठते हैं तो हमको दूसरे व्यर्थ विचार आने लगते हैं। तो व्यर्थ विचारों को हम कैसे हटाएं, तो उसको बाबा बोलते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो फुल स्टॉप कैसे लगाएं, एक हमने बात किया कि स्मृति, तो हमेशा हमको याद की यात्रा में रहना है। दूसरा है विल पावर, तीसरा है कंट्रोलिंग पावर। तो एक बार हमने संकल्प बनाया तो हमको किस चीज का संकल्प बनाना है, तो हमको जो संकल्प बनाना है, ठीक है, तो बाबा विल पावर और कंट्रोलिंग पावर को दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो विल पावर मतलब हमको महामंत्र, तो महामंत्र मतलब वापस वो है बाप की स्मृति, और कंट्रोलिंग पावर मतलब हमको महाअंतर। तो ये बाबा बात करते हैं महामंत्र और महाअंतर के बारे में। तो महाअंतर का मतलब क्या है कि हमको हर चीज के अंतर को हमको परखना है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, तो ये चीजें हमको परखने की शक्ति चाहिए। ये परखने की शक्ति पे आप कहानी अक्सर सुने होंगे क्लासेस में, तो ये दोबारा मैं कहानी दोहराता हूं क्योंकि हमको परखने की शक्ति का महत्व क्या है वो हमको समझना चाहिए। तो एक किसान होता है गांव में, काफी मेहनत करता है, फसल उगाता है, अपना जिंदगी जी लेता है, संतुष्ट रहता है। एक दिन उसके गांव में एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि तुम इतना मेहनत करते हो तो मैं तुमको और जमीन दूंगा। तो बोलता है कैसे? तो बोलता है कि तुमको सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहां से निकलना है और वापस ये पॉइंट पे पहुंचना है सूर्यास्त के पहले। तो जितने जमीन तुम चलोगे उतना तुम्हारी जमीन उतनी हो जाएगी। तो उस दिनों सुबह सूर्योदय निकल पड़ता है, जाता है जाता है जाता है, बीच में दोपहर बन धूप आ जाती है, उसको प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है, पर वो सोचता है कि अगर मैं अभी पानी पीते बैठूंगा, खाना खाते बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं ज्यादा जमीन नहीं चल पाऊंगा। तो वो ऐसे ही चलते जाता है चलते जाता है, फिर अचानक वो देखता है कि वो बहुत दूर आ चुका है, पर उसको वापिस सूर्यास्त तक वहां पहुंचना रहता है, नहीं तो उसको जमीन नहीं मिलेगी। उसको प्यास लगती रहती है, भूख लगती रहती है, फिर भी वो नहीं लेता है। फिर आखिर तक वापिस वापिस आ जाता है सूर्यास्त होने से पहले, वो पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहां पे? उसने अपने काम या लोभ, काम वो हो गया था, लोभ में बदल गया था, और वो लोभ की वजह से उसने अपनी कंट्रोलिंग पावर, शक्ति खो दी थी। उसने वो परखने की शक्ति खो दी थी कि मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, तो वो परखने की शक्ति उसने खो दी थी। तो ये कंट्रोलिंग पावर का आप यही बताते हैं कि हमको परखने की शक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसी हिंदी में इसको हम विवेक करके बोलते हैं, विजडम। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी परखने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं इसलिए अपनी स्टेज और स्टेट दोनों की स्मृति सदा रहे, तभी हम लक्ष्य की सिद्धि को पा पाएंगे। बाप कहते हैं कि अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए बाप की याद में और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प वो डगमग स्थिति बन जाए, यह कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो जब हम फुल स्टॉप की बात करते हैं तो फुल स्टॉप भी क्या है? एक पूर्णता है। ठीक है, तो हम फुल स्टॉप तो बोलते हैं कि द एंड, पर एक्चुअली अगर हम देखें तो इट्स अ सर्कल, देयर इज नो एंड। तो फुल स्टॉप का जो चिन्ह है वो एक सर्कल ही है, तो कभी एंड नहीं होता है वो। जैसे तो हमारा टाइम साइकिल हो, सत्युग हो, बाद में तो जो पूरा हम टाइम साइकिल के बारे में बात करते हैं, उसी तरह आज हमारा दिन का साइकिल के बारे में हम बात करते हैं, एक सुबह से अगले सुबह, एक अमृत वेला से अगले अमृत वेला। तो बाप बताते हैं कि हमारे जो साइकिल है तो हम तीन स्टेज से गुजरते हैं। सुबह अमृत वेला के वक्त हम एक बालक की तरह बनते हैं, फिर बाद में जब मुरली आती है तो हम गॉडली लाइफ, स्टूडेंट लाइफ बन जाती है, और बाद में जब हमको शाम में तीसरा रूप है हमारा सेवादारी का, तो सेवा में हमको ये करना है। तो ये तीनों, जब हम सेवादारी करते रहते हैं, हमने जो कुछ भी योग में और ज्ञान में जो कुछ भी हमने लिया है तो उसको हमको धारणा करनी होती है। बाप कहते हैं कि जब आप स्मृति में रहोगे तो आपका डायरेक्ट पावर है उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो आपकी विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों बढ़ जाती है। यदि यज्ञ से वो स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को हम समाप्त अथवा खत्म कर देना चाहिए, जैसे आज हमने अभी शुरू में गीत में भी सुना है, तो बिंदु स्वरूप में हम हमारे पुरानी चीजों को पूरा फुल स्टॉप लगाना है, रोज अपना हिसाब किताब चुकतु करना है। तो एक दिन खत्म हो गया, चलो बीती बातें को बिंदी लगाना है। तो अभी स्मृति या जो हम पावर हाउस के साथ कनेक्शन लगाते हैं तो इसका महत्व क्या है, इसका मैं एक सत्य घटना आपको मैं बताता हूं। 4 साल पहले जब मैं ज्ञान में आया था शुरू शुरू में, सिर्फ 2-3 महीने ही हुए थे। तो उस वक्त मेरे युगल को भी कुछ क्लास खत्म हो चुके थे, वो भी थोड़ी बहुत ज्ञान में आ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक अपने लौकिक रिश्तेदार की एक शादी में जाना था, उसको अच्छे सारे जेवरात पहन के जाने थे। तो उसने देखा कि उसने अपने बैंक का लॉकर की चाबी मिल नहीं रही है, तो उसने मुझे आके पूछा, आपको मैंने पिछली बार चाबी निकाल के रखना था, आप कहां पे रखा आपने? मैंने बोला तो मैंने तो आपको ही दिया था। तो उसने बताया, नहीं मैंने आपको ही दिखाया था। वो मान नहीं रही थी कि उसने कहीं रखा है, वो तो मेरे पे तो मैंने कहा नहीं मैंने आपको ही दिया था। तो हर जगह घर में हर जगह ढूंढ लिया, वो कमरा ये कमरा, हल अलमारी में, फिर किचन में, हर डब्बे में, सब जगह सब कुछ, चाबी मिली नहीं रही थी। बाद में फिर वो मेरे पे टूट पड़ी, नहीं आपने कहीं रखा, आपको कुछ याद वगैरह नहीं रहता है। नहीं जाओ आप, आपके ऑफिस में ढूंढो, आपके क्लिनिक में ढूंढो। अब मैं बेचारा गया ऑफिस, वहां पे भी ढूंढा, मेरे क्लिनिक में ढूंढा, सब कुछ ड्रॉअर में ढूंढा, सब कुछ निकाला, नहीं बोला, वापिस आ गया। नहीं आपको ढूंढना ही पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं बैंक मैनेजर से बात कर लेता हूँ, इसका कोई दूसरा रास्ता होगा। मैं तो अभी अभी ज्ञान में आया था, थोड़ा शांत सीखना सीख गया था। तो अपने बैंक मैनेजर के पास गया तो बोला ऐसे ऐसे, तो बैंक मैनेजर ने बोला तो नहीं, उसके लिए अभी नियम के हिसाब से आपको थोड़ा आपको FIR करना पड़ता है कि चाबी घूम गई है, फिर वो डुप्लीकेट वाले आएंगे, फिर वो डुप्लीकेट चाबी देंगे, सब कुछ प्रोसीजर है। मैं बोला ठीक है कर लेंगे। तो इतने हो गया, तब तक आप ढूंढते रहिए। तो फिर वापस मैं घर आ गया, तो बोला ठीक है 2-3 दिन वेट करेंगे फिर देखेंगे। नहीं तब तक क्या होगा, नहीं हमको वहां जाना है, फिर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, ये इतने सारे विचार आ ही रहे थे उनको। मैं बोला ठीक है, फिर वो बोली आप ऐसे शांत रहने से काम नहीं चलने वाला है। तब मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं चुप बैठा, तो बस उसी की तरफ देख रहा था। बाबा का चित्र भी था, वो मुझे शांत देखते हुए बोले ठीक है, तो मैं बाबा से पूछूं? मैं बोला पूछ लो। बस जाके 2 मिनट बैठी, 4-5 मिनट योग में ही वापिस आई, अलमीरा खोला, साड़ियों के क्रैक के नीचे उसने चाबी निकाला। तो कहने का तात्पर्य है, बाबा आके नहीं बताया कि उसको चाबी किधर है। तो उतना क्या हो रहा था कि उस परिस्थिति में उसके व्यर्थ विचार ज्यादा आ रहे थे, उसने अपने बाप को स्मृति में नहीं लाया। तो जैसे ही उसने बाप की स्मृति को लाया तो सारे व्यर्थ विचार स्टॉप हो गए, फुल स्टॉप हो गए। तो तब उसको याद आया कि मैंने चाबी कहां रखी है। तो ये थी कि बाप को हमेशा स्मृति में लाना। तो फुल स्टॉप मतलब क्या, फुल स्टॉप भी एक बिंदी है, बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, सभी लोग बिंदी है। तो बिंदी स्वरूप रहने से हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो सौरांश में फुल स्टॉप कैसे लगा सकते हैं, फुल स्टॉप को ही बिंदी मानना है, उसी बिंदी को हमको बिंदी स्वरूप, बाप स्वरूप, जो बाप एक बिंदी स्वरूप है, हम भी बिंदी स्वरूप है, सभी लोग बिंदी स्वरूप, इस स्मृति को रखते हुए हमको विल पावर और कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों चीजों को हमको लगा के फुल स्टॉप लगाना है। वैसे ये फुल स्टॉप लगाने की हमारे रोज की विधि है। तो एक विधि हम रोज करते हैं, हमारे कुमार के परिवार में एक विधि हम फुल स्टॉप लगाने के लिए करते हैं, क्या है वो? ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। तो एक विधि है, ठीक है, हम अपने काम में रखते हैं तो फिर ट्रैफिक कंट्रोल का गाना आ जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो क्या करते हैं उस वक्त, हम वापस हम बाप की स्मृति करते हैं। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल, तो अलग अलग विधियां हैं। लौकिक जीवन में कुछ भक्त करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, तो अलग अलग हमको विधियां हम अपनाते हैं। फिर अमृत वेला भी एक विधि है, अमृत वेला में योग में बैठना, वो भी एक विधि है। सत्संग में, सेल्फ प्रोग्रेस की क्लास में, ये भी एक विधि है हमको अपने आप को फुल स्टॉप लगाने की। तो आखिर में जो हम भगवद गीता में पढ़ते आत्मने आत्मना तुष्टा, मतलब हम आखिर में हम हमारे काम से हम कितना संतुष्ट है, यही हमको फैसला करेगा कि हम फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे। फुल स्टॉप भी एक संपूर्णता, एक पूर्णता है। तो ये पूर्णता जब हम संपूर्ण संपन्न अगर हमको बनना है तो हमको संतुष्टि चाहिए, इसी को लेके हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। इसी समराइज करने के लिए अगर हमको कैसे फुल स्टॉप लगाना है, बाप की स्मृति में एक स्ट्रांग संकल्प विल पावर से, कंट्रोलिंग पावर से और आत्म संतुष्टता से, ये बात कह के आज यही टॉपिक में मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ। ओम शांति। तो मेरे कार्य व्यवहार में फुल स्टॉप लगाने की भी ऐसी आती है, जब मैं मेरे क्लिनिक में बैठता हूँ तो ओपीडी की अपॉइंटमेंट होती है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो बाहर पेशेंट्स का नंबर, उनका टाइम लगने में टाइम लगता है। फिर पेशेंट जैसे ही अंदर आते हैं, क्या डॉक्टर साहब मैं 4 घंटे से बाहर बैठा हूँ, इतना देर लगाते हैं आप, तो बोलते हैं। तो शुरुआत में तो मैं कहता था कि नहीं, अगर आपको आना है दिखाना है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। तो शुरुआत में जब मैं ज्ञान में था तो मेरा बर्ताव ऐसे था। तो जब ज्ञान में आने के बाद फुल स्टॉप लगाना जब सीख गया, तो जब पेशेंट अंदर आता है तो पहले मैं बहुत एक्सप्लेनेशन देता था, मतलब अभी बाप के वरदान में एक बताया कि हम को क्वेश्चन मार्क की टेढ़ी रास्ते पे नहीं जाना है, तो फुल स्टॉप लगाने की सीधे रास्ते। तो मैं पेशेंट को बोलता था, नहीं मैं सुबह राउंड्स करता हूँ, फिर ओटी में जाता हूँ, इतना सब काम रहता है तो इतना देर हो गई, आपको बैठना ही पड़ेगा, इतना सब कुछ, बहुत सारे बातें करता था। पर आज मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ, फुल स्टॉप ही लगाता हूँ कि बेचारे पेशेंट को क्या मालूम कि मैंने सुबह से क्या किया है, वो तो अपनी तकलीफ बता रहा है, तो मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ। तो जैसे ही पेशेंट अंदर आता है तो वो ऐसे बोलने लगता है कि बाहर सिस्टर ने जल्दी नहीं छोड़ा, ये हो गया वो हो गया, तो फिर मैं उसके पॉइंट पे आ जाता हूँ, अच्छा आपको पैर की सूजन है, चलो इसको कम करेंगे। तो जैसे मैं वो बोल जाता हूँ तो वो अपनी वो कंप्लेंट भूल जाता है कि 4 घंटा बैठ गया, फिर वो अपनी जो अपनी शरीर की तकलीफ लेके आया था उसके बारे में बात करेगा। तो ये चीजें मैं अपने कार्य व्यवहार में सीखा कि फुल स्टॉप लगाने के लिए। और बीच बीच में ऐसा होता है कि जब 9वां पेशेंट 10वां पेशेंट आए तो सारी डिस्चार्ज हो जाती बैटरी, तो सारा दिन करके प्रश्न के उत्तर 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 पी के, तो एक 9वां 10वां पेशेंट आ गया तो एक डांट पड़ी तो पेशेंट पे। तो तब मैं जानता था कि नहीं, कि ये मुझे पेशेंट इरिटेट नहीं कर रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो तब वो जब वो स्मृति में लाता हूँ कि जो कंट्रोलिंग पावर मेरे में है, तो पहले लगता था कि ये पेशेंट मुझे इरिटेट कर रहा है, नहीं पेशेंट मुझे इरिटेट नहीं कर रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो तब मैंने ये स्मृति को जब लाया कि ठीक है मुझे थोड़ा भी अपने आप को रिचार्ज करना है, भले ही 1-2 या 3 मिनट में, फिर ओपीडी को बंद कर सिस्टर को बोलता हूँ अभी किसी को नहीं छोड़ना है, 5 मिनट रुको, ठीक है, फिर अपने आप को रिचार्ज कर लेता हूँ, तो फिर अगले 5 मिनट जल्द फटाफट हो जाता है। चार साल की बात है जब मैं एक माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे आया था 4 साल पहले, तो तब जब यहाँ आया तो, और वो भी एक जस्ट एक ये था, तो उससे पहले एक फ्यूचर ऑफ पावर की एक इवेंट हुई थी हमारे गांव में, कल गुलबर्गा में, तब से थोड़ा बहुत लगाव था पर आना जा, मतलब टच इन टच आउट ऐसे हो रहा था। फिर आखिर में जब माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन था, तो बाद में जब मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता तो बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन फुल है, तो मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ, बोला ठीक है मैंने तो छोड़ दिया, अभी रजिस्ट्रेशन फुल है तो फिर अगली बार देखेंगे। फिर बाद में सेंटर पे गया तो मैंने बताया रजिस्ट्रेशन फुल है, तो फिर तो हमारे सेंटर की दीदी ने फिर हमारे जो डॉक्टर है बनारसी भाई, हाँ, तो उनसे बात हो गई, तो फिर डॉक्टर बनारसी भाई ने बोलता ठीक है आने दीजिए, तो फिर मैं बिना रजिस्ट्रेशन की वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके आ गया। तो उसी दिन पहले जब डॉक्टर बनारसी भाई ने बोला कि आप लोग यहाँ पे किसी ने आपके सेंटर लोगों ने निमंत्रण दिया करके आप नहीं आए हैं, आपको यहाँ बाबा ने बुलाया है इसलिए आप आए हैं। तब मुझे लगा कि वाकई जब मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, वाइल्ड कार्ड एंट्री था, तो वाकई बाबा ने मुझे बुलाया, तब मुझे ज्ञान टच हुआ और मैं यहाँ पे ज्ञान में आ गया। या तो जब मैं यहाँ पे आया तो भले ही वो ज्ञान तो टच हो गया था और धीरे धीरे वो किया था, और क्योंकि हम लोग ये थोड़ा साइंस बैकग्राउंड में आते हैं तो कुछ चीजें हमको कभी पटती नहीं है। जैसे बोलते हैं कि अभी जैसे अभी आप चलो कल एग्जाम है, आप प्रेयर्स करो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, तो ये हमको पटती नहीं है कि अरे यार तुमने एग्जाम को प्रिपेयर नहीं किया तो एग्जाम में पास कैसे हो गए। पर यहाँ पे जब एक ज्ञान, एक बात जो छाई, जो अक्सर क्लास में जो भी माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पे बताया गया था कि आप कि जो कुछ भी हम भुगते हैं ये सब हमारे कर्म द्वारा ही हम भुगते हैं और बाप कुछ नहीं करता है, तो वो आपके रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, पर आप उसकी स्मृति करेंगे तो आप रिजल्ट चेंज करेंगे। तो ये हम साइंस लोगों को पटता है, तो ये चीजें और मुझे खींचती गई ये। और फिर बाद में जब लिखा ये सब कुछ अद्भुत है, इतने सारे लोगों को खाना बनाते हैं, सब अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोनोमस चल रहा है, तो वाकई इसमें ही कोई शक्ति है। तो शुरू शुरू में क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड में रहते हैं तो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम थोड़ा साइंस को लिंक करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में वो कर रहा था मैं, पर जैसे जैसे मैं अभी ज्ञान में और गहरा जा रहा हूँ तो मैं इसको दोनों को अलग अलग रख रहा हूँ। तो मैच होता है पर उसको मैच करने नहीं जाना है, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। हम जो अनुभव करते हैं उससे बड़ा साइंस कौन सा है। तो साइंस की टेक्स्ट बुक को और अध्यात्म को भले ही वो मैच हो या ना हो, तो हमारा अनुभव है ना, हमारा अनुभव है। सो साइंस इज अबाउट टेलिंग अदर्स अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स, वेयर स्पिरिचुअलिटी इज टेलिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस काफी अंतर है। तो ये जो अद्भुत काम चल रहा था, इतने लोग कैसे आते हैं, फिर जब मैं बात कर रहा था कि अभी जब हम भी कितना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो तब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं है। जब इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस का ही कोई बड़ा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, ये चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, कुछ नहीं है, सब काम अपने अपने चल रहा है, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो आपका ये है, तो इट्स ऑल सिस्टमैटिक एंड अपने आप चलते रहता है। तो ये मुझे बहुत अद्भुत लगा। तो तब मुझे लगा कि ये सारा ऑर्गेनाइजेशन, आज मेरे लौकिक जीवन में मैं एक हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूं, तो मेरे सारे अंडर इतने मैनेजर रहते हैं, फिर वो रिपोर्ट करते हैं, वो सारा रहता है। पर एक चीज जब मैं यहां आने के बाद सीखा कि ये सारा संसार सिर्फ दो ही चीजों पर चलती है, प्यार और सहयोग। तो जब आज मैं वापिस जाता हूं मेरे रोज कार्य व्यवहार में, तो सिर्फ प्यार और सहयोग से सब कुछ चल जाता है। कोई उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, तो जैसे अभी मैंने बताया कि लौकिक जीवन में अक्सर आजू बाजू में ही माया मंडाते रहती है, तो तो आपको वो पकड़ने में देर नहीं करती, तो और हम पकड़ में आ भी जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ मैं आता हूँ हर दो महीने या तीन मास में, जब यहाँ माउंट आता हूँ, सेवा तो एक बहाना है, है? तो वहाँ पे ये तो मैं जस्ट रिचार्ज करने के लिए आता हूँ, ये एक सही वजह है। तो और जब यहाँ पे सेवा में आता हूँ तो सेवा में एक तरह की, दरअसल जब मैं, मेरे काफी लोग वहां के डॉक्टर लोग पूछते हैं यार तुम हर दो महीने वहां जाते हो, वहां पे क्या करते हो? मैं बोलता हूँ वहां पेशेंट्स वगैरह देखता हूँ, फिर कुछ प्रोसीजर्स है, ओटी वगैरह कर लेता हूँ। आपको कितना पेमेंट करते हैं वो लोग? मैंने बोला बहुत, मेरी बहुत कमाई होती है उधर। हाँ बहुत कमाई होती है। तो हाँ हाँ बहुत कमाई होती है। तो शुरुआत में समझ में नहीं आता उनको, तो फिर फिर समझ जाते हैं कि हाँ कमाई का मतलब क्या है. तो एक अलग किस्म की कमाई के लिए मैं यहाँ आता हूँ. सेवा तो एक बहाना है. कर्नाटका गुलबर्गा पुरुषार्थ में बस अभी हालांकि मेरे इसमें अफकर कभी कभी मेरे कुछ ट्रैवलिंग या इसमें कभी कभी अमृत वेला वगैरह मिस होता है तो पर कोशिश करता हूँ कि किसी तरह. और कभी कभी देर रात कभी कभी इमरजेंसी अटेंड कर जाए फिर रात एक दो बजते हैं तो फिर मैं तब कर लेता हूँ कि थोड़ा अपने आप को फिजिकली भी मैं तंदुरुस्त रखने के लिए फिर रात एक दो बजे फिर मैं योग कर लेता हूँ फिर सो जाता हूँ. तो ये चीज़ें थोड़े मैं इस तरह के पुरुषार्थ कर लेता हूँ. सेंटर पे जो टाइमिंग हमारे यहाँ मुरली सुबह 7 बजे होती है तो टाइम मेरे लौकिक जीवन में तो वो टाइम थोड़ा मुझे सेट नहीं होता है. तो सुबह सुबह मैं जस्ट मुरली का सार वरदान और स्लोगन पढ़ लेता हूँ फिर शाम के वक्त पूरा डिटेल पढ़ लेता हूँ. और संडे के दिन मैं हमारे यहाँ एक रिट्रीट सेंटर है गुलबर्गा में तो वहाँ पे मैं जाता हूँ. मेन सेंटर भी है वहाँ पे भी जाता हूँ संडे के दिन. और सदगुरुवार की वहाँ तो एक स्पेशल भोग लगती है तो वहाँ की भोग मैं लेके ही फिर हॉस्पिटल निकलता हूँ. तो ये सारे चीज़ें मैं जहाँ जहाँ हूँ उतना करता हूँ. और जब जब यहाँ आता हूँ ये है फैक्ट है कि मैं आता हूँ रिचार्ज होके जाता हूँ संकल्प बना के जाता हूँ कि अब जाऊँगा तो एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगा एक दिन भी डिटेल्ड मुरली मिस नहीं करूंगा. फिर जाके फिर एक हफ्ते तक चल जाता है 10 दिन चल जाता है फिर फिर बाद में फिर मिस होने लगता है. फिर कभी कभी मुझे लगता है कि सेल्फ प्रोग्रेस की क्लास सुनूं तो हालांकि मुझे कभी लगता है कि मैं लाइव सुनूं. अभी यहां पे आता तो 5:15 से 6 बजे मैं लाइव सुन लेता हूं. तो वो वापस अगर मुझे जब मैं वापस गुलबर्गा जाता हूँ तो सुनना है तो फिर वो टाइम में कुछ ना कुछ और काम आ जाता है. तो फिर मैं सोचता हूँ कि कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं सुनूँ तो सुनते सुनते सो जाता हूँ तो हो नहीं पाता है. पर फिर भी जहाँ जहाँ जितना हो सके उतना मैं कर लेता हूँ. और जब भी सचिन भाई मुझे कुछ होमवर्क देते हैं तो शुरू लगता है अरे बहुत मुश्किल काम है फिर बाद में लगता है नहीं कम से कम उसी से मैं एंगेज हो जाऊंगा. एक तो निर्माणता तो एक हद तक कुछ गुण है जो हम थोड़ा हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं मुझे ये कुछ करना है वो करना है ये करना है वो एक अलग तरीके है. पर उसको सस्टेन करना है मतलब उसको हमेशा मेंटेन करना है तो ये सिर्फ योग से ही आता है. तो जो भी है नहीं तो हम नहीं अक्सर ऐसा होता था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ चेयरमैन हूँ तो बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं. तो पहले कुछ भी अगर होता था डिस्टर्ब हो जाना होता था. अभी तो डिस्टर्ब नहीं होता हूँ तो ठीक है हो गया सो हो गया. तो वो एटीट्यूड अभी चेंज हो गया है तो अभी व्यर्थ डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होता है. ये ज्ञान से काफी फायदा हुआ है बढ़ गया ज्ञान में आने से निर्माणता बढ़ गया है. नहीं 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 अभी तो मैं सेवा के लिए आया था. लौकिक परिवार में मेरे युगल हैं 2 बच्चे हैं तो 1 10 साल का बेटा है 6 साल की बेटी है और मेरे लौकिक माता पिता हैं. पत्नी बोलती तो मेरी युगल तो बोलती है ठीक है आप जो करना है करो आपको जो चाहिए वो करो मैं बीच में नहीं आऊंगी. हाँ चुट नहीं बच्चों को बाप का लगन है. हाँ हाँ काफी लगन है और वो समझते हैं वो आते हैं बीच में उनको मधुबन भी लेके आया था. हाँ लेके आते हैं तो वो भी लिखते हैं कभी कभी बाबा को अपना लेटर भी लिखते हैं आके यहाँ. जब हम पांडव भवन जाते हैं तो मेरा बेटा कुछ लेटर रेडी करता है उसका अपने शौक है तो लेटर अपने बाबा को लिख देता है. और लौकिक में जब भी वो कुछ मस्ती करे या कुछ करे तो मैं थोड़ा बहुत बीच में डांट लेता हूँ तो जब मैं उसको डांटता हूँ तो वो पूछता है पापा आपने योग किया. Ha ha ha. तो वो समझ जाता है कि डांटने पड़ेगी। ओम शांति।
प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या। मैं धन्य धन्य हो गया, ये जीवन सफल हो गया। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया सोचने को रहा जाएंगे। सुखों का सूरज उगवाएगा जब सहारा उसका पालिया। अब ढूंढने को रहा ही क्या। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया।